ओम शांति। हम सबके बीच निर्मला दीदी जी पहुंच गए हैं। आदरणीय दीदी जी के लिए पहले हम एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। दीदी जी को तो सभी पहचानते ही हैं, जिन्होंने बचपन से ही बाबा मम्मा की पालना लेते हुए पूरे विश्व का भ्रमण किया हुआ, पूरे विश्व में अनेक प्रकार की सेवाएं दी हुई और आज भी बाप दादा की आज्ञा अनुसार ज्ञान सरोवर में रहते हुए विदेश की सेवाएं देखते रहते हैं और हम भी समय प्रति समय दीदी जी का लाभ लेते रहते हैं। अनेकानेक गुणों से दीदी जी को बाबा ने भरपूर किया है, उनका अनुभव भी हम समय प्रति समय करते रहते हैं। आज हम उनके द्वारा कर्मयोग से कर्म भोग पर कैसे विजय प्राप्त करें उसके विषय में सुनेंगे आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पिछले 63 जन्मों से हम पाप करते रहे, जाने अनजाने कितने पाप किए होंगे। क्या है कि इसी जन्म में देखो तो गुस्से वश कितनों को दुख दिया होगा, विशेष अपने परिवार को, बाल बच्चों को, पत्नी को या पति को गुस्सा किया होगा। लक्ष्य तो अच्छा होता है कि बच्चा हमारा सुधर जाए, परंतु उसके लिए कभी मारते हैं, पीटते हैं, गुस्सा करते हैं, गाली देते हैं। तो क्या है कि लोभ वश, मोह वश, अहंकार वश, क्रोध वश, ईर्ष्या वश हम पाप करते आए और द्वापर से करते आए। ये हम जानते हैं हमारा अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म में हिसाब किताब यहाँ चुक्त करना है। ब्राह्मणों का हिसाब किताब यहीं चुक्त होना है। धर्मराजपुरी में बहुत नई शिक्षा होंगी, जो होगा यहीं। और ज्ञान में आने के बाद यदि कोई पाप कर्म किया है तो और भी सोगना भोगना भोगनी पड़ती है। तो इसलिए स्वभाव संस्कार के वश पाप करते रहे। अभी पुण्यात्मा बनना है, कर्म भोग चुक्त करना है। वो तो योग द्वारा ही चुक्त होगा ना। आजकल की बाबा की वाणियां इसी पर चलती है कि योग द्वारा पुराने पाप कर्म भस्म करने हैं। तो योग को अग्नि कहा जाता है। तो इसलिए देखना है कि कर्म की भोगना हमारी किस किस प्रकार से हो सकती है। शारीरिक बीमारी तो हो सकती है, और आजकल तो कईयों को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, कई कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो ये है कर्म भोग हमारा कि हमने शरीर द्वारा किसी को दुख दिया है तो शरीर को भोगना पड़ती है। फ्रैक्चर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये भी कर्म भोग है। फिर है दूसरा कर्म भोग, हम संबंधों में गड़बड़ी, पुराने जमाने में तो जॉइंट फैमिली रहती थी, अभी तो ज्यादातर मियां बीबी और बच्चे, ठीक है ना। जॉइंट फैमिली में कौन रहते हैं, जिसमें सासू ससुरा बहू साथ में रहते, जरा हाथ उठाना, ननंद है, सासू है, ससुरा है, जेठ जेठानी है, ऐसे तो जॉइंट फैमिली में भी मेरा तेरा, मेरी ड्यूटी तेरी ड्यूटी, मेरे बच्चे तेरे बच्चे, झगड़े करते रहते हैं। विशेष ननंद और सासू का बहू के ऊपर थोड़ा रुआब होता है, किसी की सासू माँ जैसी होती है और किसी की सासू झगड़ा करने वाली होती है या बात बात में टोकने वाली होती है, ये क्यों किया, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ये करो। ननंद भी कोई भाभी होशियार होती है, कोई ननन बासी होती है, तो ये भी झगड़ा होता है। कभी कभी पति पत्नी में भी झगड़ा होता है। आजकल तो कई पति पत्नी को दहेज के लिए तंग करते हैं, कई पत्नियां अपने आप को आपघात कर देती है किसी भी प्रकार से, कि बहुत तंग हो जाती है। तो पति पत्नी का झगड़ा होता है, कभी सासू बहू का होता है, कभी माँ बाप बच्चों का होता है, क्योंकि माँ बाप पुराने जमाने के होंगे, बच्चे नए जमाने के, और छोटे बच्चे तो चंचल होते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो माँ बाप को भी टेंशन हो जाता है, पढ़ाई बच्चों की और टेंशन माँ बाप को। कोई किसी के बच्चे अच्छे होते हैं तो ये भी तो अच्छे कर्म है। और ड्रग्स का भी पंजाब के तरफ तो बहुत है ड्रग्स का, कि जवान लोग ड्रग्स में पैसा बर्बाद करते हैं, जीवन बर्बाद करते हैं। सबसे ज्यादा मैंने समझा है पंजाब में होता है ड्रग्स, तो ऐसे बच्चे हो जाते हैं जो काम धंधा नहीं करते हैं या कमाते हैं और पैसे उसी में ही लगाते हैं अपनी ड्रग्स के लिए, बीवी बच्चों का भी ख्याल नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार संबंधों में गड़बड़ हो सकती है, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे संबंधी मिलते हैं, कुछ उन्हों के साथ हमने हिसाब किताब बांधा है, तो ऐसे संबंध ही मिलते हैं। और ध्यान में आने के बाद सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है पवित्रता की, खान पान की। यदि फैमिली से एक ही व्यक्ति ज्ञान में है, दूसरे नहीं है, तो कहेंगे क्यों नहीं खाते हैं, समाज में जाते हैं, परिवार में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, खाना चाहिए। और पवित्रता की तो बात ही मत पूछो। कईयों को मारपीट सहन करनी पड़ती है, शुरू शुरू में तो बहुत ही मारपीट होती थी। कुमारियों को भी पंजाब में, विशेष अमृतसर में जो कुमारियां निकली, माँ बाप तंग करते थे, शादी क्यों नहीं करती है। उनके हाथ पर, हथेली पर पलंग का पांव रखकर बाप उस पर बैठ जाता था तंग करने के लिए। और सवेरे सर्दियों में यदि कुमारी क्लास में जाती थी तो घर में नहीं आने देते थे कि तुम जाओ, चली जाओ ब्रह्मा कुमारियों के पास, क्यों आई है। या तो जाने नहीं देते थे, या जाते थे तो आने नहीं देते थे। तो शुरू शुरू में तो बहुत था, अभी तो मुझे मालूम नहीं है पंजाब में क्या है, पटियाला में क्या है, परंतु ये भी कुछ कर्मों का हिसाब किताब होता है, तो बंधन हो जाता है। और फिर धन के बारे में हमारा हिसाब किताब हो जाता है कि घर में चोरी हो जाती है, या आजकल तो रास्ते चलते चलते स्कूटर पर आकर पर्स छीन कर चले जाते हैं, ठगी करते हैं कि आप अपना सोना ले आओ। साधु आता है घर में कि मैं उसको डबल कर दूंगा, तो कई बिचारी भोली माताएं बहनें सब सोना ले आती है, और साधु क्या करता है, वो सोना लेके जाता है और पित्तल की बातें छोड़ जाता है, तो ठगी होती है। व्यापार में तो ठगी की बात ही मत पूछो। कितनों का माल लेके उसका पैसा नहीं देते हैं, कितनों को एक माल दिखाकर दूसरा माल देते हैं, अनेक प्रकार की ठगी होती है। और इतने तक कि इंडिया से भी, अभी अभी मैं श्रीलंका से आई थी, कईयों को क्या है, गरीबी के कारण समझते हैं हम विदेश जाएं तो अच्छी कमाई होंगी, तो इसलिए एजेंट से वीसा लेने की कोशिश करते हैं। एजेंट उसको इल्लीगली भेज देते हैं और पैसा खूब लेते हैं, लाखों की लाखों की। हमने एक हमारे सामने एक हिसाब ये था, एक माता ने पति को भेजने के लिए, वो माता ज्ञान में आई थी, नई नई थी, और उसने सोचा पति विदेश जाएगा तो मैं पवित्र रह सकूंगी। उसने वहाँ के 40 लाख रुपया अपने मित्र संबंधियों से लेकर दिया कि पति जाए तो मैं छूटू। और नेचुरली है, उसके मित्र संबंधी तो मांगेंगे पैसा। 3 साल के बाद उस भाई को वीजा मिला वहां का, 3 साल तक नौकरी वीजा कुछ नहीं, रेफ्यूजी। अभी 3 साल के बाद बुलाता है शरद करके कि तुमको आने के पहले मित्र संबंधियों के घर जाना है, मीट वगैरह खाना है, और यहाँ आएंगी मेरी पत्नी के रूप में रहेंगी, ब्रह्मा कुमारी नहीं, मतलब पवित्र नहीं रह सकेंगी। वो बिचारी माता फंस गई ना, अभी 40 लाख यहाँ मित्र संबंधियों को कैसे दें? और मित्र संबंधी तो कहेंगे हमने तो तुमको पैसा दिया था, हमने कोई दामाद को पैसा नहीं दिया है, हमको दो पैसा। तो क्या है कि धन का तो नौकरी छूट गई, व्यापार में कर्जा हो गया, कई प्रकार के धन की तकलीफ होती है आजकल। तो ये भी एक कर्मों का हिसाब किताब है। फिर कुदरती आफतें कहाँ कहाँ, कुदरती आफतें आती हैं। जैसे भारत में देखो तो बिहार में हर वर्ष बाढ़ आती है, गंगा और नदियों में इतनी बाढ़ आती है जो उसके तट पर रहने वाले उनका घर बार सब तबाह हो जाता है। तो कहाँ नेचुरल कैलमिटीज होती है, भारत में तो विशेष वही होता है बाढ़, अतिवर्षा या अनावर्षा, क्योंकि महाराष्ट्र में आजकल और कई देशों में, कई शहरों में अनावर्षा होती है, अतिवर्षा है या अनावर्षा। तो कई खेडू है कर्जा इतना हो जाता है उनको, आप घात करना पड़ता है। तो बाबा के बच्चे भाग्यशाली है, कम से कम दाल रोटी तो मिल जाती है, परंतु जिनके माथे कर्जा है वो तो बेचारे चिंता में रहते हैं। तो मानसिक तकलीफ होती है किसी को, शारीरिक तकलीफ होती है, धन की तकलीफ होती है, और एक्सीडेंट्स। भारत में जितने लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं और कोई बीमारी से नहीं मरते, सबसे ज्यादा मौत रोड एक्सीडेंट्स। तो मौत आया तो ठीक है, चलो चला गया, पर जो हड्डियां टूट गई या उसके कारण पैरालिसिस हुआ या कुछ हुआ, काम धंधा बंद गया, बंद हो गया, तो सारे जीवन की तकलीफ हो जाती है। तो इसी रीत से भिन्न भिन्न प्रकार से इस अंतिम जन्म में कर्म भोग भोगना पड़ता है। नहीं, हम कहते थे ना कभी कभी कि मम्मा को कैंसर हुआ था, तो लोग कहते हैं वो इतनी योगी तपस्विनी थी, उसको कैसे क्यों कैंसर हुआ, ऐसी बीमारी क्यों हुई। तो हम कहते हैं कि ये भी तो हिसाब किताब है ना, जो भी दादियां हैं जितना भी समय समझो उनकी तबीयत खराब रहती है। कई दादियां तो हमने देखा कितने मास तक बेहोश या वेंटिलेटर पर ऐसे रही। हिसाब किताब, जब तक शरीर से, डॉक्टरों से, नर्सिस से, मित्र संबंधियों से हिसाब किताब है, शरीर में रहकर खुद भोगना तो भोगते हैं परंतु औरों को भी तकलीफ होती है, क्योंकि खर्चा तो मित्र संबंधियों को करना पड़ता है। तो क्या है कि इसी प्रकार से सबको कर्मों का हिसाब किताब भोगना है, परंतु फर्क योगी में क्या होता है कि योगी है वो उस समय अशरीरी बनकर इतने शांत रहते हैं, जो डॉक्टर्स आदि भी उनको भी आश्चर्य होता है कि ये कैसे इतना शांत रहते हैं। अभी भी हम बंबई में दादी गुलजार से मिलने 23 तारीख को गई थी, तो डॉक्टर कहता था कि जो स्पेशलिस्ट है कहते हैं कि इतनी बीमारी इतना कष्ट ये योगी है इसलिए ही सहन करके चलती रहती है। तो क्या है कि योगी के कारण हम देखते हैं तो दादी तो एकदम परे रहती है, सारा समय उनकी आंखें बंद होती है, मेजोरिटी टाइम। मैं गई तो भाग्यवश 2 सेकंड दादी ने आंखें खोली, नहीं तो मेजोरिटी सब कहते हैं कि दादी की आंखें तो बंद ही थी। तो क्या है कि ये है कि वो प्राण रहते हैं शरीर से, पेन से, सबसे उपराम रहते हैं। तो क्या है इतनी उनको पेन नहीं होता है। मम्मा को भी इतनी बीमारी थी, सांस लेने में भी तकलीफ होती थी क्योंकि कैंसर फेफड़ों में भी चला गया था, तो फेफड़े भी सूख गए थे। तो क्या है कि कभी उनके चेहरे से मालूम नहीं पड़ता था कि मम्मा इतनी बीमार है। बंबई से जब छुट्टी ली, क्योंकि 4 जून बंबई से छुट्टी ली और 24 जून शरीर छोड़ा, तो जब छुट्टी ली तब डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको जहां भी ले जाना है, जहां भी शरीर छोड़ना है ले जाओ। तो जब छुट्टी ली तभी भी किसी बंबई के ब्राह्मणों को ये नहीं हुआ था कि अब मम्मा लास्ट स्टेज में है। सिर्फ हम चार पांच जने डॉक्टर्स वगैरह थे या शील दादी वगैरह थे, उनको मालूम था कि मम्मा भी लास्ट स्टेज में है। तो सांस भी ऐसे लेती थी जो नो, जब जाती थी टोली लेने आने वाले थे तो टोली लेने वाले यहाँ से आते थे, तो जब सामने आते थे तो सांस ठीक लेती थी, वो चले जाते थे फिर गहरा सांस लेती थी। और अंत तक सेवा करती रही। तो क्या है सेवा करने से, कर्म भोग चुप्त तो होता रहता है। मुंबई में रेडियो थेरेपी लेते आती रहती थी, बीच बीच में पुणे भी जाती रहती थी और क्लासेस भी कराती रहती थी बीच बीच में। तो इसलिए बीमारी में उन्होंने छोड़ा नहीं सेवा। और योग भी, योग का इतने सालों से अभ्यास था, 40-50 साल का दादियों का। तो क्या है बीमारी में भी योग में रहते थे। इसलिए चेहरा कभी उदास नहीं होता था, शांत चित्त होता था। तो इसलिए हमें पहले से शुरू से ज्यादा समय का ये अभ्यास होना चाहिए, चलते फिरते योग में रहें, ताकि जब ऐसा कर्म भोग भोगना होता है तब हम सहन कर सके। और कर्म करते योग कर रहे हैं। बहने थोड़ा इस तरफ आ जाए, भाई थोड़े ही है, बहने आगे भी आ सकती है और इस तरफ भी जा सकती है। तो इसलिए कर्म करते हम कर्म योगी है, ये हमें याद रखना है अपना टाइटल, कि हम कर्म योगी, राजयोगी, सहज योगी है। इसलिए कर्म करते करते हमें योग लगाना है। कर्म में बिजी नहीं होना, यही हमारा और लौकिक का फर्क हो, कि लौकिक तो है कर्म करते करते क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी में बुद्धि होती है, किसको क्या अच्छा लगता है, क्या खिलाना है, कितना नमक डालना है, उसको कितना चाहिए, उसको कितना चाहिए, इसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, तो उसमें ही बिजी रहते हैं। लेकिन हमें बाबा की याद में खाना पकाना है, सफाई करनी है, बगीचे का काम करना है, जो भी काम करते हैं बाबा की याद में करने का पहले से अभ्यास रखना है। और अपना नियम बनाना है कि विशेष बैठकर भी याद करें। हमारा जो नियम है अमृत वेला, उस अमृत वेला में सिर्फ ज्ञान मंथन नहीं करना है, वो तो शुरू की स्टेज है ज्ञान का मंथन करना। दूसरी स्टेज है चिटचैट, उसमें भी हमारा हिसाब किताब चुकुन तो नहीं होगा पाप कर्मों का, पर जो बीज रूप स्थिति है, तपस्या है, ज्वालामुखी योग है, वो होना चाहिए। तो उससे हमारे विकर्म विनाश होंगे, संस्कार बदलेंगे। क्योंकि योग है कोई तो नियम से करते हैं अमृत वेला, कोई प्यार से करते हैं, कोई स्वार्थ से करते हैं, बाबा से मांगते रहते हैं अभी भी। तो हमारा योग अभी बीज रूप हो, बाबा की याद में हम खो जाएं। मैं आत्मा, शिव बाबा परमात्मा, बीच में और कुछ नहीं, न ज्ञान का मंथन, न सेवा का प्लान, कुछ नहीं। फिर ट्रैफिक कंट्रोल पर भी हमारा ध्यान रहे, दो दो घंटे दो मिनट योग करना है, एक एक घंटे एक मिनट योग करना है, शाम का भी आधा घंटा जो भी हमें टाइम मिले निकाल करके, चाहे सेंटर में जा सके या न जा सके, अपने घर में एक मेडिटेशन कमरा हो, बाबा का कमरा हो। आपके कितनों के घरों में बाबा का कमरा है, जरा हाथ उठाना। अच्छा, 30-40% है जिनके घर में बाबा का कमरा है, और जिनके कमरे बाबा का कमरा भी ना हो, एक स्थान बनाओ जहां बैठकर योग करो, बाबा का चित्र हो या ओपन में नेचर का सहयोग हो, क्योंकि कईयों को ये भी शौक होता है कि खुले में, खुली हवा में बाबा को याद करें। और आप लोगों के पास तो गार्डन होगा ना, मेजोरिटी के पास गार्डन होता है, यहाँ जो बहुत फ्लैट वाले नहीं है उनके पास तो गार्डन होता है। तो गार्डन में बैठकर, खुले में बैठकर, गैलरी में बैठकर याद कर सकते हैं। और सोने के पहले जरूर योग में बैठना है। बाबा ने कहा है मन को ट्रेन करो, उसको ऑर्डर दो और जहां चाहो वहां पहुंच जाए। सेकंड में यहां है, सेकंड में सूक्ष्म वतन में जाओ, सेकंड में परमधाम जाओ। तो जैसे ऑर्डर करो कि साकार वतन से, सूक्ष्म वतन से, मूल वतन उमन जाना चाहिए, क्योंकि यही राजयोग की विशेषता है कि मन हमारे कंट्रोल में रहे, हम मन के वश न हो, मन हमारे वश हो। उसको ऑर्डर करो और जाए। तो जितनी प्रैक्टिस होगी तो सहज हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, बीमारी है, तकलीफ है, समस्या है, विघ्न है, तो रोते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे, हर एक के पास जाकर कहेंगे ये है मेरा दुख है, मेरा दुख है। आपके पास भी कोई आएगा तो ये अपने दुख की गाथा गाएंगे, ये बीमारी है, ये डॉक्टरों ने कहा है, ये खाना नहीं खा सकते हैं, इतनी दवाइयां लेनी पड़ती है आदि आदि। तो हमारे पास एक माता थी, उसको ब्रेस्ट का कैंसर हुआ था, 60s में थी और ज्ञान में थोड़े समय से आई थी। तो मुझे पूछा कि दीदी मैं ऑपरेशन नहीं कराऊं, मेडिटेशन से अच्छा हो जाएगा? मैंने कहा नहीं, मेडिटेशन भी करो ऑपरेशन भी कराओ। ऑपरेशन कराने गई तो जब थिएटर में जो उसको ले जा रहा था ना वार्ड बॉय, वो उसको देख के कहता है तुम तो बहुत खुश लगती हो, तुमको डर नहीं लगता है ऑपरेशन का? नहीं। फिर ऑपरेशन के बाद मित्र संबंधी मिलने आए, वो खुशी खुशी से बात करे और भी उनको दिलासा देवे। नहीं तो लौकिक में क्या करते हैं, पेशेंट को सब दिलासा देते हैं, भाई क्या है क्या नहीं है कैसे हैं, ठीक हो जाएगा आदि आदि। तो ये ज्ञानी की विशेषता है कि कर्म भोग को योग द्वारा कंट्रोल में रखे ताकि चेहरा खुश मिजाज रहे। और बाबा ने बीच में पांच फॉर्म का भी बताया कि कैसे पूज्य से पुजारी हम बनते हैं, तो वो भी पांच युग का चक्कर लगाना है ताकि मन हमारा बिजी रहे। और शुरू शुरू में हम भट्टियां करते थे तो हमको कहा जाता था कि 4 से 8 बजे तक रोज मौन रखो, किसी को फोन नहीं करो, किसी का फोन नहीं लो, किसी से बात नहीं करो। और मनमोहिनी दीदी उसमें बहुत स्ट्रिक्ट थी, कोई भी उनके पास अमृत मुरली के पहले जाता था शांत, अभी जरूरी है बात, अर्जेंट है, मुरली के बाद आना। या हम साधारण आवाज से बोलते थे तो भी कहती थी अब शांति शांति से बोलो। तो क्या है, बड़ी दीदी योग में इतना बहुत स्ट्रिक्ट थी, कोई भी आता था मुरली के बाद खास विदेशियों को बुलाती थी और दृष्टि देती थी, मुरली के प्रश्न पूछती थी। उन दिनों में मुरली में प्रश्न नहीं होते लिखत में, अभी तो क्या है राजू भाई प्रश्न निकाल करके मुरली में पहले लिखते हैं, मुरली का सार लिखते हैं, परंतु दीदी फिर उनको पूछती थी आज बाबा ने इस बारे में अब हमको क्या कहा बताओ। तो क्या है, ज्ञान योग का दीदी जी को बहुत शौक था और मुरली भी सुनते सुनते उसका प्रश्न लिखती थी ताकि वो फिर प्रश्न पूछ सकती थी और जवाब तो लिखती रहती थी। और कई लोग हैं, उन दिनों में हमको तो भट्टियों में समझाया जाता था कि हफ्ते में एक दिन मौन रखो और मौन रखते थे हम लोग। सेंटर पर 4-5 बहने रहने वाली होती थी तो क्या करते थे, हर एक का टर्न, क्योंकि फोन आता है, जवाब देना पड़ता है, कोर्स करना होता है, कई बातें होती है, तो सब बहने तो एक दिन मौन नहीं रखते हैं, तो हम लोग टर्न रखते थे, कोई किस दिन कोई किस दिन, सारा दिन मौन मौन का साइलेंस का बैज। अभी भी विदेशी आते हैं ना तो साइलेंस का बैज पहन के घूमते हैं कि हम आज साइलेंस में हैं, कोई बात ना करें। और हम लोग क्या करते हैं कि 18 जनवरी के आसपास जो ग्रुप आता है ना, वो क्या करते हैं, भोजन के लिए भी एक एरिया ऐसी रखते हैं जहां सब मौन में बैठते हैं, दूसरी एरिया में बातचीत करने वाले बैठते हैं। तो क्या है, जितना बहुत काल का अभ्यास होगा तो उस समय लास्ट में क्या होगा, सहज हो जाएगा। जब भी क्योंकि कर्म भोग तो भोगना ही है किसी न किसी प्रकार से, हर एक को, किसी को ज्यादा है किसी को कम है, परंतु भोगना पड़ता है। किसी के सर टांगों में दर्द है, आर्थराइटिस है, किसी को आजकल कमर में दर्द है सबको, किसी को सर दर्द की बीमारी है, तो छोटी मोटी तो बीमारी सबको रहती है। तो इसलिए क्या है कि जितना योग का अभ्यास होगा वो हम कर्म भोग को कर्म योग से बदलकर शांत और पेन के बिगर बिता सकते हैं। इसलिए जितनी हमको उपराम रहने की आदत होगी, योग में रहने की आदत होगी, तो उससे हिसाब किताब भी चुप्त होगा, तो शरीर भान से भी परे हो जाएंगे। इसलिए अशरीरी रहने का भी हमको काफी अभ्यास करना है, और जितना अभ्यास होगा तो परीक्षा के समय काम हो, परीक्षा तो आएंगी, हमको पास करना है, तब पास रिटर्नर होंगे। तो इसलिए बाबा तो हमें युक्तियां बताते रहते हैं, अभी हमें उस पर चलना है। तो इसलिए बाबा की याद में भट्टी में आप आए हैं, तो यहां से इतनी पावरफुल भट्टी करो जो पिछला हिसाब किताब चुकतू हो जाए। तो इसलिए साधारण योग ना हो, परंतु योग तपस्या। इतना बाबा की याद में लीन हो जाऊं कि मैं और बाबा और कुछ नहीं। तो देखो पांडव भवन में भट्टी करने का बहुतों को चांस नहीं मिलता है, कईयों की क्यू लगी हुई है, आपका क्यू में नंबर लग गया, तो कितने लकी हो। तो इसलिए लकी हो, यहाँ आए हो तो इसका पूरा लाभ लेना। तो अभी एक घंटा बाबा की याद में रहेंगे तो अपने को शरीर से परे ले जाओ।
जो प्यार मिला मुझे वर्णन करूं मैं कैसे मुख से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से, ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से, जो प्यार मिला मुझे